विवाह के बाद राजा गंगाधर राव को फिर से शासन का अधिकार मिल गया, पर अधिकार मिलने के पहले कंपनी सरकार के साथ एक और अहदनामा हुआ। अब झांसी में अंग्रेजी फौज रखी जाएगी, पर उसका खर्च झांसी का राज्य देगा। गंगाधर राव ने नगद न देकर झांसी के राज्य से 2,27,498 रुपए की वार्षिक आय वाला इलाका उन्हें दे दिया। अपने प्रदेश की स्थिति निवासियों के साथ रानी को भी बहुत खटका। रानी अपना अधिकतर समय किले वाले महल में बाकी स्त्रियों के साथ सवारी, शस्त्र प्रयोग, मलखम, कुश्ती इत्यादि के अभ्यास में बिताती थी। साथ ही भगवत गीता में श्रद्धा के चलते वेद अध्ययन भी नित्य रूप से होता था। झांसी से आने के बाद चपल मनु में एक अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे घर करता चला जा रहा था। एक ओर गंभीरता अपनी जगह बना रही थी और दूसरी ओर क्रुद्ध होने की वृत्ति धुलती जा रही थी। व्यंग की इच्छा बढ़ गई थी, पर सहज सरल भव्य दिव्य मुस्कान ने साथ न छोड़ा और साथ ही मन की दृढ़ता ने मनु की आभा को और निखार दिया। वहीं नए अहदनामे के बाद राजा का मन अब नाटकशाला में भी नहीं लग रहा था। वे रंग महल में रानी के पास लौट आए, अपने भावों को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए राजा बोले,
एक नए नाटक का मंचन करवा रहे हैं, आप देखने चलेंगी?
नहीं।
घोड़े की सवारी, कुश्ती, मलखम से किसे हराने का मन है?
किसी को नहीं। वैसे नाटकशाला में जो हथियार बनते हैं उनसे क्या अंग्रेज नहीं हराए जा सकते?
रानी का व्यंग भांप कर राजा बोले,
आप कभी कभी बहुत बड़ी चोट कर बैठती हैं। आप राज्य का प्रबंध सीखिए, मैं भी इस ओर ध्यान देता हूं। अच्छी व्यवस्था रहेगी तो राज्य बचा रहेगा, अन्यथा अंग्रेज या तो राज्य को अपनी देखरेख में ले लेंगे या राज्य पर अपना अधिकार जमा लेंगे।
हाँ, वैसे सही ही है। वैसे इन दिनों नाटकशाला के मनोरंजन से अधिक हो भी क्या सकता है। राज्य का काम चलाने के लिए दीवान तो है ही, डाकुओं को पकड़ने और लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अंग्रेज सेना भी है। इस पर भी कोई गलती हो गई तो कंपनी के एजेंट की खुशामदी कर ली और सब काम जो का त्यों मन माना चलता रहेगा।
मुस्कान के साथ कही हुई इस कटाक्ष भरी बात में रानी की तेज बुद्धि का आभास पाकर राजा विस्मय से भर गए और उनके होठों पर बरबसी हंसी आ गई।